प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 10 अगस्त 2016 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्यारे साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं राकेश कुमार जो बिहार से हैं और वीनस आर पटेल जो पालनपुर से हैं। तो राकेश और वीनस, आप दोनों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अब मैं बधाई देना चाहूंगा दो अपने नौजवान मित्रों को, आप सब की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी, जिन्होंने अलग अलग एग्जामिनेशन में सफलताएं हासिल की हैं। तो मित्रों, उसमें से पहले हमारे दोस्त हैं दिलमिल सिंह सोच, जिन्होंने पंजाब के स्टेट सिविल सर्विस में 21st रैंक हासिल की है। आपको शायद याद होगा कि वही दिलमिल सिंह सोच हैं जो हमारे बैच के, सेकंड बैच के स्टूडेंट भी रहे हैं और जिन्होंने अभी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे उसमें उन्होंने बहुत अच्छी रैंक हासिल की। और जब कल मैंने उनसे बात की तो पता लगा कि उन्हें कस्टम एंड एक्साइज सर्विस प्राप्त हुई है। तो दिलमिल सिंह, आपको मेरे पूरे प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल और अपनी ओर से इस सफलता के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। और आप प्री में एपियर हुए हैं, जैसा कि बातचीत से पता लगा आपके पेपर्स अच्छे हुए हैं, डेफिनेटली सफलता आपको मिलेगी ही, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। और सिविल सर्विस के आगे की जो मेंस और इंटरव्यू के एग्जाम होंगे उसके लिए भी हम सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, हमारे दूसरे दोस्त हैं अमित पांडे, जिन्होंने लिखा है कि यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर के पद के लिए उनका चयन हो गया है और इसका श्रेय उन्होंने डेली ऑडियो गाइडेंस को भी दिया है। तो अमित, आपको भी हम मेरे पूरे प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि आप और भी बेहतर के लिए कोशिश कर रहे हो तो बधाई एवं शुभकामनाएं उसके लिए भी। तो मित्रों, अब मैं चूंकि दिलमिल सिंह सोच की बात चल रही है तो इसी क्रम में मैं उनके एक ईमेल का उल्लेख करना चाहूंगा जिसके द्वारा उन्होंने मुझे इसके बारे में सूचित भी किया था। उन्होंने खासकर, मित्रों, जो बात लिखी है वो जो मेरी एक किताब आई है आप आईएएस कैसे बनेंगे उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं और उनकी जो लाइन है, दो तीन लाइनें हैं, मैं आपको पढ़ देता हूं। और मित्रों, खासकर मैं ये लाइन इसलिए पढ़ना चाह रहा हूं, मेल उनका काफी बड़ा है, क्योंकि मुझसे बहुत से स्टूडेंट अपने ईमेल के जरिए ये पूछते हैं कि सर, हम अपने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कैसे शुरू करें। नो डाउट, मैं समझ सकता हूं कि ये शुरुआत करने वाले हर विद्यार्थी की समस्या होती है, बड़ी समस्या होती है और जेन्यून समस्या होती है। मैं वैसे भी उनसे कहता रहता हूं कि मेरी ये किताब आई है, प्लीज आप उसे देख लें और उसमें से आपको बहुत से अपनी समस्याओं के समाधान मिल जाएंगे। फिर भी मेरे कहने का असर अलग है और एक ऐसे स्टूडेंट का जिसने सिविल सर्विस एग्जाम में सफलता पाई है, जब वो इसी बात को कहते हैं तो उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से अलग होता है। तो उन्होंने मेल इंग्लिश में लिखा है, उनके मैं कुछ पंक्तियां, लिखे हुए मेल की कुछ पंक्तियां यहां कोट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा है, पहले सूचित किया कि पंजाब पीसीएस में उन्होंने 21st रैंक हासिल की है। लिखा है कि दिस रिजल्ट इज नॉट माइन बट कंप्लीटली योर्स, एज आई टोल्ड यू हाउ माय लाइफ चेंज्ड वंस पिक्ड अप योर बुक। इफ एवर आई राइट माई ऑटोबायोग्राफी देन श्योरली दैट वुड बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड टिल नाउ द बॉन्ड हैज बीन ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। इसमें जो किताब की बात उन्होंने लिखी है, पिक्ड अप योर बुक, मित्रों, बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि यह वही किताब है जिसका मैं अक्सर उल्लेख कर देता हूं, जिसका नाम है आप आईएएस कैसे बनेंगे। मित्रों, यह हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, पंजाबी में भी है और गुजराती में भी है। आप में से जो भी अपने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के बारे में एक रिटेन फॉर्मेट में गाइडेंस चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यह किताब आपकी मदद कर सकती है। तो दिलमिल, आपके इन शब्दों के लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी एकेडमी के सभी साथियों की ओर से आपके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं आज के लाइफ मैनेजमेंट पर, और आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आपको दो छोटे छोटे अलग किस्से सुनाने जा रहा हूं। दोनों किस्से अलग अलग हैं लेकिन बहुत प्यारे हैं, और साथ ही साथ जिंदगी के प्रबंधन से बहुत कुछ जुड़े हुए भी हैं, जिनसे हम बहुत शिक्षाएं भी ले सकते हैं अपने लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। दोस्तों, पहला जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं, कहानी कहने जा रहा हूं, वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से जुड़ी हुई है। देखें कि हुआ क्या था कि एक बार कालिदास के नाटक शकुंतला का मंचन हो रहा था, जिसमें नेहरू जी आमंत्रित थे। जो मैंने नोट किया है मैं उसे उसी रूप में पढ़ रहा हूं, है ना, तो यहां जरा सा आपको पढ़ते हुए मैं सुनाई दूंगा, बोलते हुए सुनाई नहीं दूंगा, मैं पढ़ रहा हूं। एक बार कालिदास के नाटक शकुंतला का मंचन हो रहा था जिसमें नेहरू जी आमंत्रित थे। प्रधानमंत्री जी के सचिवालय से दिल्ली के हिंदुस्तानी थिएटर के पास फोन आया कि क्या प्रधानमंत्री जी नाटक देखने के लिए अपने एक मित्र को भी साथ ला सकते हैं। निश्चय ही उधर से उत्तर आया, अवश्य, क्यों नहीं। शाम को प्रधानमंत्री नेहरू अपने मित्र मिश्र के राष्ट्रपति कमाल अब्दुल नासिर को लेकर नाटक देखने गए। मित्रों, ये वही अब्दुल नासिर हैं जिनके साथ मिलकर के हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी ने गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन जो था उसकी स्थापना की थी। मित्रों, बहुत छोटी सी घटना है ये, लेकिन सच पूछे तो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ बहुत ही सम्मानित और प्यारे प्रधानमंत्री, इनफैक्ट नेहरू जी को लोग बहुत प्यार करते थे, बेइंतहा प्यार करते थे, जो जिसको कहते हैं कि एक तो प्रधानमंत्री होने के नाते आपके पास शक्ति होती है, उसकी वजह से आपको सम्मान मिलता है, लेकिन आपका व्यवहार होने की वजह से आपको लोगों का प्यार मिलता है। नेहरू जी के बारे में जो मैंने कहा कि लोग उन्हें बेइंतहा प्यार करते थे, तो उस बेइंतहा प्यार के पीछे कौन सी बात थी, कौन सी ताकत थी, उनकी कौन सी क्षमता थी, वह आपको उनके इस कहानी में दिखाई देगी। दिखाई क्या देगी, सुनाई देगी। आप देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री, इतने प्यारे प्रधानमंत्री, और उनको एक नाटक देखने जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पहुंच गए और अगर वो ऐसे भी पहुंच जाते तो उनको कौन मना करता और ससम्मान उनको बुलाया जाता, बैठाया जाता। लेकिन मित्रों, तब ये कहानी कहां से बनती, ये आपको पता कैसे चलता, आने वाली पीढ़ी को एहसास कैसे होता। तो मित्रों, बकायदे फोन किया गया हिंदुस्तानी थिएटर को। आप देखिए कि किस तरीके से दूसरे के जो अधिकार हैं, दूसरे की जो गरिमा है, जिसे मैं अक्सर ह्यूमन डिग्निटी का नाम देता हूं और जिसका उल्लेख हमारी उद्देशिका में है, मनुष्य की गरिमा, तो इसमें आपको उस मनुष्य की गरिमा का सम्मान दिखाई देगा कि नहीं, वहां नाटक कौन देखने जाएंगे उसका अपना एक सिस्टम है, और हिंदुस्तानी थिएटर को इस बात का अधिकार है कि वो किसे इजाजत देता है और किसे इजाजत नहीं देता है। तो सबसे पहले उसकी अनुमति ली जानी चाहिए, उस संस्था से पूछा जाना चाहिए कि क्या ऐसा किया जा सकता है। और मित्रों, फिर मेहमान भी थे तो कौन थे, मिस्र के राष्ट्रपति। कल्पना करके देखिए कि अगर हिंदुस्तानी थिएटर ने यह कह दिया होता कि नहीं, अब तो सीट ही खाली नहीं है, हालांकि हम मतलब ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कहा जा सकता है, कहा जाएगा, कोई भी राष्ट्र नहीं कहेगा, किसी भी राष्ट्र का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेगा, क्योंकि सवाल वहां प्रधानमंत्री का नहीं है, सवाल हमारे देश का है। नेहरू जी ठीक है, व्यक्ति के तौर पर व्यक्ति भी थे, हमारे लीडर भी थे, लेकिन वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे, तो सवाल देश का भी होता है, कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन फिर भी देखिए कि दूसरों को सम्मान देने का, दूसरों की गरिमा की रक्षा करने का कितना खूबसूरत उदाहरण इसमें आपको मिलता है। मित्रों, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? हम चाहे किसी भी पद पर हो, किसी भी रूप में क्यों ना हो, हमारी पहचान कुछ भी क्यों ना हो, मान करके चलिए मित्रों कि हमारे जीवन में एक ही दिन में न जाने कितने ऐसे मौके आते हैं जब हम अपने से छोटे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। देखिए, हम बड़ों का तो सम्मान करते ही हैं, सामान्य तौर पर बड़ों का सम्मान हमसे हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छोटों का सम्मान कैसे की जाए, उनकी गरिमा की कैसे रक्षा की जाए। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसके गरिमा की रक्षा कर रहे हैं, अपने से छोटों की गरिमा की रक्षा कर रहे हैं। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है और मैं समझता हूं कि शायद नेहरू जी की ये कहानी हम सब में दूसरों के, स्पेशली जो हमसे छोटे हैं, किसी भी रूप में छोटे हो, चाहे उम्र में हो, पद में हो, धन में हो, जिस रूप में भी हो, अगर हम समझते हैं कि वो छोटे हैं तो उनके गरिमा का सम्मान करके हमें उन्हें बड़ा बना देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन छोटों को बड़ा बना देंगे सच पूछे तो तभी वो छोटे हमें बड़ा समझेंगे भी, तो हम प्रमाण तो दें कि हम वास्तव में बड़े हैं। दोस्तों, अब जिंदगी से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी देखिए कि जो हमारी जिंदगियां हैं वो कैसे टर्न लेती हैं, क्या से क्या हो जाती हैं। हम सोचते हैं वो चीजें हो जाती हैं, कैसे हो जाती हैं, यानी कि सपनों का सच में तब्दील हो जाना एक बड़ी खूबसूरत सच्ची कहानी है। मित्रों, एक आनंद बख्शी जी का नाम आप जानते ही हैं, वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही महान संगीतकार हैं, म्यूजिशियन हैं। उनका पहले का नाम नंदो था, ये भी मैं अब लिखा हुआ जो मैंने नोट किया है मैं वो आपको पढ़कर सुना रहा हूं। नंदो इन ब्रैकेट में आनंद बख्शी, अभी 10 साल के भी नहीं हुए थे कि उनके मां का देहांत हो गया था। उनके गीतों में अपनी मां को खोने का यह दर्द जब तब उनके फिल्मी गीतों में उभरता रहा है, जैसे छोटे भाई फिल्म का मां मुझे अपने आंचल में छुपा ले, मस्ताना का मैंने मां को देखा है मां का प्यार नहीं देखा, तथा खलनायक का मां तुझे सलाम आदि। मित्रों, मैं एक करेक्शन कर दूं, ये मैं शायद संगीतकार बोल गया हूं, ये बहुत ही महान गीतकार हैं, है ना, लिरिसिस्ट हैं। मैं मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद मैं जल्दी जल्दी में संगीतकार बोल गया। वे 7वीं तक ही पढ़ सके, उन्होंने अपने कोर्स की किताबें रद्दी में बेचकर फिल्में देखी। विभाजन के बाद वे भारत आ गए और आर्मी के कोर ऑफ सिग्नल्स जबलपुर में बतौर ऑपरेटर काम करने लगे। आनंद बख्शी ने एक बार रेडियो पर कहा था कि अपने इंटरव्यू में कहा था कि मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं सर्द पहाड़ों पर रात के वक्त अपनी यूनिट के लाउडस्पीकर के नीचे खड़ा हुआ फिल्मी गीते सुना करता था और सोचा करता था कि क्या कभी ऐसा वक्त आएगा कि उसी स्पीकर के नीचे खड़े होकर लोग मेरे गीत सुनेंगे। और मित्रों, वो दिन आ गया, आया ही नहीं, बार बार आया और अभी तक वे दिन बने हुए हैं। आप देखिए कि कैसे एक उनके जो अवचेतन मन की जो एक इच्छा थी कि क्या सच में कभी ऐसा भी होगा कि मैं जिनके गीतों को सुन रहा हूं क्या कभी लोग मेरे गीतों को भी सुनेंगे। जैसे मित्रों, इसी तरह की ख्वाहिश है, ओठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो, यानी कि मैं जो गीत लिख रहा हूं क्या कभी ऐसा होगा कि इन ये गीत गाए भी जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था मित्रों, बंगाल में एक बाउल की परंपरा है, वो बाउल उनको कहते हैं जो सुबह अपने खड़ताल वगैरह लेकर के और भजन और गीत गाते हुए शहरों में और गांवों में घुमा करते हैं, उनको बाउल कहते हैं। बंगाल की बड़ी सशक्त सांस्कृतिक परंपरा है। इतने बड़े महाकवि जो जिनको नोबेल प्राइज मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मेरे लिखे गीत ये बाउल गाएंगे। बाउल गाएंगे का मतलब है कि लोगों के दिल दिमाग में रच बस जाएंगे, लोगों के ऊंटों पर जाकर के वो बसें, रचें, तब सही मायने में मैं गीत कार कहलाऊंगा, गीत रचयिता कहलाऊंगा, कवि कहलाऊंगा। लगभग लगभग उसी तरह की भावना आपको आनंद बख्शी जी के इस अवचेतन मन में पलती हुई दिखाई दे रही है, और आप जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनकी यह ख्वाहिश पूरी हुई, अच्छे खासे तौर पर पूरी हुई, लेकिन अपने आप पूरी नहीं हो गई। तो मित्रों, ये दो छोटी छोटी कथाएं जो सच्ची कथाएं हैं, या पता नहीं अब इसको कथाएं कहें या घटनाएं कहें, समझ में नहीं आता, आपके सामने मैंने रखी हैं। बहुत प्यारी मुझे लगी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने डेली ऑडियो गाइडेंस के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं AIR न्यूज पर। मित्रों, एक इससे पहले कि मैं AIR न्यूज के बारे में आज बातें करूं, एक छोटी सी सूचना मैं देना चाहूंगा, और वो ये कि पता नहीं क्या सिस्टम में क्या कुछ हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं सामान्यतः जो रात की खबरें होती हैं वो सुबह ही सुना करता हूं, जैसे कल रात में जो पौने नौ और नौ बजे की जो खबरें होती हैं आज सुबह सुना करता हूं, ताकि मेरे दिमाग में वो खबरें फ्रेश हों और फिर मैं उसकी एनालिसिस आपको कर सकूं, है ना। और फिर रात में मैं अपने टीवी पर डिस्कशंस और चैनल्स की न्यूज देख लेता हूं, फिर सुबह अखबार और इस न्यूज से जुड़ करके फिर मैं आपके सामने पेश होता हूं। मित्रों, आज पता नहीं सुबह क्या हुआ कि बार बार कोशिश करने के बाद भी जो रात की न्यूज थी वो नहीं लग पा रही, या तो डाउनलोड मतलब क्या हुआ है मुझे नहीं मालूम, टेक्निकल। बहुत कोशिश की गई, दूसरों के द्वारा भी कोशिश की गई, लेकिन न्यूज नहीं लग पाई। तो फिर जाकर के ये हुआ कि आज सुबह की न्यूज कम से कम सुन ली जाए, 10 मिनट की सुबह की न्यूज आती है, फिर समाचार पत्रों से उसी के कंटिन्यूएशन में आता है जो आप लोगों को मालूम ही है, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए फिर मैंने सुबह की न्यूज सुनी है। तो इसीलिए अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वह आज के ही सुबह की न्यूज के आधार पर कर रहा हूं, तो इस बात के लिए मैं माफी चाहूंगा कि कल रात की न्यूज आज हमारे इस AIR न्यूज का हिस्सा नहीं बन पा रही है। लेकिन मैं एक बात आपको और भी बता दूं, आप लोगों का अनुभव भी रहा होगा कि रात की जो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं वो सुबह के खबरों में काफी कुछ रिपीट भी हो जाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 9 बजे तक की, 8:30-9 बजे तक की खबरें तो उसमें कवर हो चुकी होती हैं रात के न्यूज में। फिर रात भर कोई ऐसी घटना नहीं होती है, इंटरनेशनल लेवल पर भले ही हो, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं जो न्यूज का आधार बन सके, तो काफी कुछ मिलता जुलता भी है, हालांकि डुप्लीकेट नहीं होता कि बिल्कुल वही रूप सुबह की भी न्यूज का हो। तो मित्रों, मैं सुबह की न्यूज को आधार बना करके आज आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं, उसके बाद फिर हम अखबारों पर आएंगे। सुबह की खबर थी कि हमारे अपने प्रधानमंत्री, रूस के प्रधानमंत्री और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जी, आज एक संयंत्र है जो कोडम कोलम का जो संयंत्र है, जहां एटॉमिक एनर्जी तैयार की जाती है, उसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उसके पहले संयंत्र को, उसकी पहली इकाई को, पहले संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे तीनों मिलकर। आप सोच सकते हैं कि इसमें रशिया क्यों है, तो हमारे यहां मित्रों ज्यादातर जो इस तरह के एटॉमिक एनर्जी के जो संयंत्र लगे हैं, जो प्लांट लगे हैं, जिसे अंग्रेजी में हम प्लांट कहते हैं, वो विदेशी सहयोग से ही लगे हुए हैं। तो ये जो संयंत्र है, जो प्लांट है, ये रूस के सहयोग से चूंकि लगा है, तो बटने चले कि उसमें रूस के प्रधानमंत्री हैं, और तमिलनाडु में लगा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से प्रोटोकॉल के तहत तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता जी हैं। ये 1988 में लगाया गया था, न्यूज में आपने सुना होगा, और इसके बाद 2013 से इसमें उत्पादन होना शुरू हो गया था, फॉर्मली उसे आज राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है, ये एक खबर थी। मित्रों, जो दो दूसरी जो खबरें थी वो ऐसी थी जो हम लोग कल जिसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। पहली खबर गो हत्या के मामलों को लेकर के थी, जिस पर प्रधानमंत्री जी ने एक अपना आक्रोश व्यक्त किया था, वो राष्ट्रीय आक्रोश ही एक तरीके से था कि गो हत्या मतलब गो संरक्षण के नाम पर कुछ ऐसे लोग उभर आए हैं, ऐसी संस्थाएं, ऐसे संगठन उभर आए हैं जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने उस पर रोष व्यक्त करते हुए राज्यों से अनुरोध किया था कि वो देखें कि ऐसे कौन लोग हैं जो ये सब काम कर रहे हैं, और उस पर जल्दी से जल्दी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जो दूसरी खबर है इस तरह की मित्रों, वो जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर है। आप देख रहे हैं कि कश्मीर में स्थिति काफी खराब सी हो गई थी आज से लगभग लगभग एक महीने पहले, और उसके कुछ हिस्से लगातार कर्फ्यू में बने हुए हैं, एक तरह से झड़पें जारी हैं। अब पार्लियामेंट में उस पर बहस भी होने वाली है, अब देखते हैं कि बहस में क्या चीजें निकल कर आती हैं। भारत अपना विरोध पाकिस्तान के सामने व्यक्त कर चुका है, क्योंकि सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि इन सब के पीछे पाकिस्तानी सत्ता का कहीं न कहीं हाथ है, ये मानकर चला जा रहा है। तो मित्रों देखते हैं कि आगे क्या स्थिति होती है, लेकिन कुल मिलाकर यह कि जो कश्मीर वाला जो टॉपिक है, मुझे लगता है कि सिविल सर्विस के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। दो लिहाज से यह इम्पोर्टेंट होगा मित्रों। पहला तो यह है कि जो कश्मीर का जो भारत में विलय हुआ है, आपको उसके बारे में तैयारी कर लेनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में कश्मीर का विलय भारत में हुआ। उस समय प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और कश्मीर पर अचानक पाकिस्तान के कुछ समूहों ने हमला कर दिया था, तो वहां के जो उस समय शासक थे उन्हें अचानक बहुत चिंता हुई, तो उन्होंने भारत से मदद मांगी थी, भारत ने सैन्य मदद दी थी कश्मीर के शासक को, हिंदू शासक थे, और फिर उनको खदेड़ने के बाद फिर वहां के जो हिंदू शासक हैं एक उन्होंने संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके विधिवत तरीके से कश्मीर को भारत में विलय होने कर दिया था। ये बिल्कुल एक संवैधानिक जो तरीका होता है उसी के तहत कश्मीर भारत का हिस्सा बना है, तो ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए। इतिहास के किताब में आपको ये विधिवत तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने को मिल जाएगा। इसके बाद फिर ये कश्मीर की समस्या क्या है और किस तरीके से ये हैंडल की जा रही है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, इन इश्यूज पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। और इसके बारे में आप देख रहे हैं कि आर्टिकल्स आने शुरू हो गए हैं, तो इस तरह के आर्टिकल्स मैं प्रोवाइड करता रहूंगा और उसके आधार पर आप अपनी धारणा बनाते रहें, नोट्स लेते रहें, इसको फिलहाल इंपॉर्टेंट टॉपिक मानकर चले। दोस्तों मुझे नहीं मालूम कि डेफिनेटली होगा ही, कल रात की न्यूज में यह खबर जरूर होगी, इरोम शर्मिला की खबर, क्योंकि चैनल्स पर यह खबर थी कि कल उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया जो 16 साल से वो चला आ रहा था। एक तरीके से कह लीजिए कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, और आत्महत्या करना भारतीय दंड संहिता मतलब अपराध संहिता के अनुसार अपराध है, तो उनको फिर एक तरह से हाउस अरेस्ट जैसा कर लिया गया था, और 16 साल से फिर वो अनशन पर थी, लिक्विड डाइट पर रह रही थी। अब जाकर के उन्होंने अनशन तोड़ा है और घोषणा की है कि अब वो चुनाव लड़ेंगी, यानी कि जो एक डेमोक्रेटिक पैटर्न होता है उसकी मुख्य धारा में वो शामिल होंगी। तो मित्रों ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है, इसको लेकर के दैनिक भास्कर ने जो एक एडिटोरियल कमेंट लिखा है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इरोम शर्मिला जी के दो तीन चीजें आपको दिखाई देंगी, एक तो ये है कि इनका जो पूरा का पूरा जो संघर्ष था 16 साल का, वो एक तरीके का कह सकते हैं अहिंसक संघर्ष था, सत्याग्रह का ही एक दूसरा रूप था। दूसरा मित्रों कुछ जो राजनीतिज्ञ हैं इसे इस रूप में भी देखते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में किसी भी व्यक्ति को 16 साल तक संघर्ष करना पड़े, और वो भी लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, और फिर उसे समाप्त करना पड़े बिना मांग पूरी हुए, तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो एक नेगोशिएशन होता है, जो बातचीत के दौर होते हैं, कहीं ना कहीं ये उसकी असफलता की ओर भी संकेत करता है। इस तरह की बात दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में उठाई है, तो मैं ये आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों जैसा कि अभी मैंने कहा कि उर्मिला जो इरोम शर्मिला हैं ये आत्महत्या के प्रयास के तहत उनको इस तरीके का प्रोटेक्शन दिया गया था, आप कह लीजिए। तो आत्महत्या का जो मामला है ये बड़े विचित्र सा मामला है, क्योंकि हमारे यहां ये है कि जो आत्महत्या करने की कोशिश, हत्या किसी की भी की जाए, चाहे दूसरे की जाए या खुद की क्यों ना की जाए, वो एक अपराध है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना यह है मित्रों कि इस संहिता में बदलाव, इस कानून में बदलाव के लिए ऑलरेडी एक विधेयक संसद में विचाराधीन है, जिसमें यह व्यवस्था की जा रही है कि नहीं, जो आत्महत्या के जो प्रयास किए जाते हैं उसे अपराध न माना जाए, व्यक्ति को बचाया जाए और फिर उसे उसकी पुनर्स्थापना की कोशिश की जाए। क्योंकि जो आत्महत्या करने की जो उसकी कोशिश है उसके पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं, सबसे बड़ा रीजन तो डिप्रेशन का ही होता है, एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है, डिप्रेशन का शिकार है वो, हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहा है, कुछ काफी कुछ जेनेटिक भी होते हैं, वंशानुगत भी होता है, जीवन शैली भी अब इस तरह की होती जा रही है कि वो प्रकृति से दूर होती जा रही है। लगातार व्यक्ति तनाव में रह रहा है जिसकी वजह से उसके अंदर इस तरह की भावनाएं पैदा हो जाती हैं। तो आत्महत्या के बहुत से दूसरे कारण होते हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि वो चिकित्सीय और सामाजिक कारण ज्यादा हैं, आपराधिक कारण नहीं है। तो इस रूप में अब संसद में एक विधेयक पेश किया गया है और अगर वो पारित हो जाता है तो फिर ये अपराध से की श्रेणी से गायब निकल जाएगा और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। और यदि हो जाता है, इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा, और यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो एक बहुत बड़ी बात होगी और सिविल सर्विस के लिहाज से फिर आपको उसकी जानकारी होनी भी चाहिए। तो मित्रों, ये न्यूज में बस इतनी ही बातें हैं। रियो ओलंपिक तो अभी चल ही रहा है, देखिए कि अंतिम परिणाम क्या आते हैं, तब उस पर बात करना ज्यादा उपयोगी होगा। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। कुछ क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लेंगे। एक क्लिपिंग्स की मैं स्पेशली बात करूंगा मित्रों, जो जनसत्ता के कल के जनसत्ता में छपे, खासकर लाभ के पद को लेकर। ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, काफी अभी ये मामला चर्चित भी रहा है, तो मुझे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट मालूम पड़ रहा है। आपको मालूम है कि दिल्ली सरकार ने अपने 21 एमएलए को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, सचिव बना दिया था, संसदीय सचिव, और उसको फिर लाभ का पद माना गया और उसको लेकर के विवाद चल रहा है। अभी मामला डिसाइड नहीं हुआ है लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। तो ये जो लाभ का पद है हमारे संविधान में, महत्वपूर्ण बात है कि ये डिफाइन नहीं है, मतलब लाभ का पद किसे कहा जाएगा ये परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसको लेकर के एक द्वंद की स्थिति बन जाती है कि जिस पद के अगेंस्ट क्या आप वेतन ले रहे हैं वही लाभ का पद है, या उसे कैसे आप परिभाषित करेंगे। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए दोस्तों एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई थी, 15 सदस्य थे उसमें, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के। अब उस समिति ने अपनी रिपोर्ट एक तरीके से दी है, अब देखते हैं कि उस पर क्या होता है। मैं इसकी थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड ये बता दूं कि दोस्तों ये जो लाभ के पद की जो अवधारणा है ये बेसिकली ब्रिटेन से ही विकसित हुई। हमने जो डेमोक्रेसी का जो सेटअप लिया हुआ है वो ज्यादातर ब्रिटेन से ही लिया हुआ है, और हमारे संविधान में जो सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी है, शक्ति पृथककरण का सिद्धांत, उस पर आधारित है। शक्ति पृथककरण का सिद्धांत क्या है, आप बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं कि जो प्रशासन है या राजनीति है, टोटल पूरा जो तंत्र है, उसके 3 सबसे प्रमुख पाए होते हैं, स्तंभ होते हैं, पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी। शक्ति पृथककरण का सिद्धांत बहुत सिंपली यही है कि ये जो तीनों हैं, ये तीनों की शक्तियां बिल्कुल अलग अलग होंगी। शक्तियां अलग अलग होंगी का कारण केवल ये है कि ताकि ये पूरी निश्चिंतता तटस्थता के साथ अपने हितों से ऊपर उठ करके अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकें, इन पर किसी तरह का कोई दबाव न हो। देखिए, विधायिका सर्वोपरि होती है, उसको कानून बनाने की ताकत होती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, लेकिन इन दोनों में भी अलगाव होना जरूरी है क्योंकि अदरवाइज कार्यपालिका पर विधायिका का दबाव हो सकता है, और अगर एक ही व्यक्ति दोनों ही जगह पर है तो फिर वो कार्यपालिका का दबाव विधायिका पर भी हो सकता है कि आप इस तरह के कानून बनाइए। तो उस ऐसी स्थिति में एक जो विशुद्धता होती है, जो प्योरिटी ऑफ थॉट्स होती है, प्योरिटी ऑफ एक्शन होता है, वो सच पूछे तो वो सही रूप में बच नहीं पाता। और जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी तो आप जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप देख ही रहे हैं। तो ये शक्ति पृथककरण के सिद्धांत पर ये आधारित है। तो मित्रों, अब देखते हैं कि आगे इसे किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे बीच इससे पहले भी इस तरह के अवसर आए हैं, जब लाभ के पद का विवाद छिड़ा था, जब सोनिया गांधी जी, खासकर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय जब वो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष थी, तब ये सवाल उठा था कि ये तो लाभ का पद है और उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थी, तो दोनों पद नहीं रख सकते, तो उन्होंने फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद से त्यागपत्र दे दिया था। और इसके बाद में फिर हुआ ये कि कानून के बदल दिया गया और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष को लाभ के पद से किनारे कर दिया गया। ठीक इसी तरह से 2013 में एक अधिनियम, एक बिल लाया गया और उस बिल के आधार पर जो अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के पद हैं, उनको भी लाभ के पद से अलग कर दिया गया। तो भले ही कानूनन उन्हें अलग कर दिया जाए, लेकिन उनकी कार्य प्रणालियों को देखना होगा कि कहीं इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि इसके हित दूसरे के हितों से संबंधित हो जाते हों। ये बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो हितों के टकराव हैं, उनसे भी बचाने का एक माध्यम है। तो मित्रों, चूंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी प्रेजेंट समय में बर्निंग टॉपिक है, इसीलिए इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो मित्रों, न्यूज पेपर्स से इतना ही। अब मैं आता हूं ईमेल पर। तो ईमेल लिखने वाले अपने सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, बहुत से मेल आए हैं जिसमें खासकर जो डेली ऑडियो गाइडेंस लंबे समय से सुन रहे हैं, जिन्होंने क्लासेज अटेंड की हैं, उन सब ने अपने अपने अनुभव शेयर किए हैं कि प्री में उन्हें कितनी मदद मिली है। और डेफिनेटली यदि उन्हें मदद मिली है तो ये इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और खासकर उत्कर्ष दीप जो पटना के हमारे स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि क्या क्या फायदा उसमें उन्हें हुआ है। मित्रों, सबने अपने अपने ढंग से लिखा है। डेली ऑडियो गाइडेंस में कितनी चीजें मेंशन होती थी, अखबारों की क्लिपिंग से क्या फायदा हुए, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए गए उससे भी उनको बहुत फायदा हुआ, क्लासेस कैसे क्लासेस ने उनके अंदर सब्जेक्ट की गहरी समझ पैदा करके बहुत से क्वेश्चंस में मदद की। तो ये सारे फीडबैक मुझे मिल रहे हैं, आगे भी फीडबैक आमंत्रित हैं। इन सब के मिलने के बाद फिर देखिए कि हम लोग किस तरह की क्या योजना बनाते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो भी बनेगी वो कुछ न कुछ बेहतरी के लिए ही होगी। और वह योजना डेफिनेटली, वो जो भी परिवर्तन होगा वह आप लोगों के फीडबैक पर आधारित होगा। तो मित्रों, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए मैं कुछ दोस्तों के नाम ले रहा हूं। उसमें हेतराम प्रजापत जयपुर से, सांवरमल मीणा टोंक राजस्थान से, अखिलेश कुमार डेहरिया चेन्नई से, जितेंद्र साह अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल से, पंकज मिश्रा पटना से और पवन, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।